होता है डिटर्मिनेशन के साथ जब आप एक बात करते हैं, यानी उसे कभी, नेवर, उसे मैं कभी, आई विल नेवर कास्ट हिम आउट इफ एनीवन कम्स टू मी, खुदा यीशु मसीह ने यह कहा है। इसके बारे में मैं आपको आज शाम कलाम सुनाऊंगा, लेकिन जो रिमेनिंग वर्सेस हैं वो भी थोड़ी सी पढ़कर उन पर भी रोशनी डालना चाहूंगा। और लिखा है, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं। अब याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ही सिर्फ इस धरती पर ऐसी हस्ती आई है या जन्म लिया है ऐसी हस्ती ने जो जमीन से नहीं बल्कि आसमान से उतरी है। ये खुदावंद यीशु मसीह लोगों को, हजारों की तादाद में लोग वहां मौजूद थे, शागिर्द भी वहां पर मौजूद थे, और उस वक्त तक, उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह ये बात कह रहे थे, बहुत से शागिर्द थे उस वक्त, सिर्फ 12 नहीं थे बल्कि बहुत से शागिर्द थे जब खुदावंद यीशु मसीह ये कलाम उनके साथ कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसा मैंने पहले भी 3 हफ्ते पहले बयान किया था, योना की इंजील और उसका 3 बाब और उसकी 13 आयत, द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 3:13 में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम, यानी उतर कर जो इब्ने आदम बना है, जो आसमान में है। उसने कहा, बेशक मैं आसमान से उतरा हूं, फिर भी मैं आसमान पर हूं। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने वही बात दोबारा की है कि मैं आसमान से उतरा हूं। अब जमीन पर लाखों, करोड़ों बल्कि अरबों इंसान आज तक पैदा हुए हैं, और सब के सब जो हैं वो जानते हैं, यहां तक के बड़े से बड़े अंबिया कराम जो थे, बड़े बड़े जो नबी थे, उन्होंने भी इकरार किया, उन्होंने कन्फेस किया, उन्होंने कहा कि मैं तो खाक और राख हूं। उन्होंने कहा कि अब अय्यूब नबी बहुत बड़े नबी थे, ऐसा ईमान वाला नबी, ऐसा जबरदस्त खुदा का खादिम, ऐसा नबी, ऐसा रास्तबाज जिसकी खुदा ने, यहोवा एलोहिम एदोनाय ने जिसकी तारीफ अपने मुंह से बयान की, और वो भी शैतान के सामने, इबलीस के सामने, तरीकी की कुवतों के सामने, अंधेरे की शक्तियों के सामने, फरिश्तों और क्रूबियों और सराफीम के सामने खुदा ने फरमा दिया। जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, उसका 1 बाब और उसकी 6, 7, 8, 9, 10 आयत, तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने कहा कि अय्यूब मेरा रास्तबाज बंदा है, जोब इज माय राइचियस मैन। अय्यूब जो है वो मेरा रास्तबाज बंदा है, ए पर्सन हु इज राइट स्टैंडिंग विद गॉड, ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग विद गॉड, हु इज वॉकिंग विद गॉड। खुदा ने किसी और के बारे में यह बात नहीं कही कि वो मेरा रास्तबाज बंदा है, स्पेसिफिकली शैतान के सामने, खास तौर पर शैतान के सामने खुदा ने कहा कि वो मेरा रास्तबाज बंदा है। लेकिन जब हम उसकी सारी आजमाइशों के बाद आखिर में 42 बाब जब पढ़ते हैं, 42 बाब जड़ा अय्यूब दी किताब दा, द बुक ऑफ जॉब, पहला जो स्क्रिप्चर मैंने बताया, द बुक ऑफ जॉब chapter 1 verses 6, 7, 8, 9, 10, एंड नाउ आई एम टेलिंग द बुक ऑफ जॉब chapter 42 verses 4, 5, 6, 7, 8, 9, वहां पर लिखा हुआ अय्यूब की किताब उसका 42 बाब और उसकी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आयत जब पढ़े तो वहां पर लिखा है कि फिर खुदा ने अपना आप अय्यूब पर जाहिर किया सारी आजमाइशों के बाद। सब कुछ जब अय्यूब साबित कदम रहा, सारी बातों के बाद जब उसने सब कुछ लूज कर दिया, उसका सब कुछ जब खो गया, यहां तक कि उसकी सेहत भी उससे छिन गई, तो फिर भी खुदा उसको मिलने के लिए जब आया तो अय्यूब ने खुदा को कहा, क्या खुदा, पहले तो मैंने सिर्फ तेरी आवाज सुनी थी या तेरे बारे में सुना था, पर अब मेरी आंख ने तुझे देख लिया है और मैं खाक और राख में बैठकर तौबा करता हूं। वो कहता है कि मैं खाक में बैठकर राख में बैठकर तौबा करता हूं। सुलेमान बादशाह, जो बाइबल में लिखा है कि वो सब इंसानों से ज्यादा दौलतमंद था, ऐसी शान शौकत थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी उसका जिक्र किया है। जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं उसका 6 बाब और उसकी 18 से 26 आयत तक, या खास तौर पर द गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 12 लूका की इंजील और उसका 12 बाब जब हम पढ़ते हैं, तो उसकी 22 से 30 आयत जब हम पढ़ें द गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्सेस 22-30, वहां पर खुदा यीशु मसीह ने जिक्र किया। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि सुलेमान भी अपनी सारी शान शौकत होने के बावजूद, जो जिस तरह से फूल खूबसूरत हैं, जिस तरह से खुदा फूलों को ऐसा खूबसूरत बना देता है, ऐसा लिबास फूलों को बना देता है कि हर शख्स उनको रुक कर देखता है और उसकी तारीफ करता है, ये बहुत खूबसूरत है, इसके कलर्स देखो, इसके रंग देखो, इसकी खुशबू देखो, तो लिखा है कि सुलेमान अपनी सारी शान शौकत के बावजूद उनकी मानद मुलबिस नहीं होता था, यानी उसका लिबास भी ऐसा नहीं होता था। तो यही सुलेमान जो था, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन, बहुत ज्यादा अमीर आदमी था। आज का जो बिल गेट्स है, इससे भी ज्यादा अमीर आदमी था वो। तो वो जब वाइज की किताब लिखता है, इक्लिजियास्टस उसको इंग्लिश में कहते हैं, एक कहोतां तो अगली जड़ी किताब है पंजाबी, कहोतां तो अगली किताब जड़ी है, वाइज की किताब में वो कहता है 12 बाब और उसकी 7 आयत में, आखिरी बाब है चैप्टर 12 द बुक ऑफ एक्लिजियास्टस वर्स 10, उसमें वो कहता है कि खाक जो है वो खाक से जा मिले और रूह उसके पास जिसने उसे दिया था, यानी हर मनुख जड़ा है, हर मनुष्य जो है वो खाक ही से, मट्टी से बना है और मट्टी ही में लौट जाएगा, फिर वो दोबारा मट्टी में जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह मट्टी से बने हुए नहीं थे, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं आसमान से उतरा हूं और मैं इसलिए उतरा हूं ताकि मैं कुचले हुओं को आजाद करूं, मैं इसलिए उतरा हूं ताकि शैतान इबलीस के सर को कुचल दूं, उसके मंसूबे को, उसके प्लान को मैं तबाह कर दूं, मैं आसमान से इसलिए उतरा हूं ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील में और उसका 4 बाब और उसकी 17-18-19-20 है जब हम पढ़ते हैं द गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्सेस 17-18-19-20, वहां पर ये आप पढ़ सकते हैं जो हवाला मैंने बोला है। खुदावंद यीशु मसीह आसमान से इंसान को नजात देने के लिए आए थे, बल्कि जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत, यानी पंजाबी जी 17 आयत पढ़ना, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 17 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं लोगों को रद्द करूं, कंडम करने के लिए नहीं मैं आया, बल्कि मैं इसलिए आया हूं ताकि लोगों को नजात दूं। हर इंसान को निजात की जरूरत है, हर इंसान को फ्रीडम की जरूरत है, हर इंसान को आजादी की जरूरत है, हर इंसान को शिफा की जरूरत है, हर इंसान जो है उसको पीस की जरूरत है, हर इंसान जो उसको आसमानी खुशी की जरूरत है, द जॉय ऑफ हेवन एवरी पर्सन नीड्स, हर इंसान को शांति की जरूरत है, पीस ऑफ माइंड की जरूरत है, और ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास आने से मिलता है। यहां पर हमें कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही तरीका है, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से। और यहां पर खुदम यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरे पास आए, एनीवन, इफ एनीवन कम्स टू मी, नो मैटर किस रिलीजन का कोई शख्स है, किसी मजहब, किसी धर्म को वो मानता है, किसी नेशनैलिटी से है, किसी परिवार से है, किसी कबीले से है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे कभी भी निकाल नहीं दूंगा. आई विल नेवर का मतलब है कभी भी नहीं. यानी ये इस बात पर जोर दिया गया है, हरगिज निकाल नहीं दूंगा. आई विल नेवर कास्ट हिम आउट. कोई भी शख्स जो खुदा यीशु मसीह के पास आया, खुदा यीशु मसीह ने उसको कबूल किया. बल्कि बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, जब हम मत्ती की इंजील का मताला करते हैं, उसको गौर से जब पढ़ते हैं, तो खुदा यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के शुरू में जो मिरेकल्स किए, उनमें शुरू ही में खुदा यीशु मसीह ने जो मौजजा किया, अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 5-11, मत्ती की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 5-11 आयत में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह के पास एक रोमी सूबेदार आया और उसने अगर बेनती की, उसने अगर मिन्नत कही करी कि मेरे घर में मेरा खादिम फालिज का मारा पड़ा है, पैरालाइज्ड है और वो नहायत तकलीफ में है, बड़ा दुख उठा रहा है. खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, तू बेशक गैर कौम का है, बेशक तू इसराइल में से नहीं है, मैं तेरे खादिम को आकर शिफा दूंगा. वो तो खैर, ही वॉज ए मैन ऑफ फेथ. वो शख्स जो था, सूबेदार जो था, उसमें बड़ा हैरान कुन ईमान था, बड़ा एस्टोनिशिंग फेथ था उसके पास. उसने तो खुदा यीशु मसीह को भी हैरान कर दिया था. उसने कहा नहीं प्रभु जी, नहीं है खुदावंद, मैं इस काबिल नहीं, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर आए. तू यहां से कह दे, जस्ट सेंड योर वर्ड, सिर्फ कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैंने ऐसा ईमान तो इसराइल में भी नहीं पाया. अब ये गैर कौम का बंदा था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको निकाला नहीं. शायद आपके जहन में ये बात है जो बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में एक जिक्र हम पढ़ते हैं मत्ती ही की इंजील में और उसके 15 बाब में और उसकी 11 आयत से लेकर 17 आयत तक, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्सेस 11-17. वहां पर जिक्र है कि एक कनानी औरत जो थी वो खुदा यीशु मसीह के पास आई, उसकी बेटी को डीमंस ने, शैतानी कुवतों ने, दुष्ट आत्माओं ने, बदरूहों ने पकड़ा हुआ था और वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया. उसने कहा खुदावंद मुझ पर रहम कर, एक बुरी रूह मेरी बेटी को सताती है, मुझ पर रहम कर. वो चिल्लाती रही. और कलाम में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ जवाब ना दिया. इसका क्या मतलब था कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको निकाल दिया? निकाल नहीं दिया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह लोगों को और खास तौर पर अपने शागिर्दों को ईमान की तालीम देना चाहते थे. इसलिए खुदावंद यीशु मसीह खामोश रहे. आप याद रखें, जब खुदा आपको ईमान की तालीम देता है तो उस वक्त खुदा कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लेता है, खुदा बोलता नहीं. आपको जब कोई रिस्पॉन्स खुदा से नहीं मिलता, जब आपको दुआ का जवाब नहीं मिल रहा होता, आप चिल्ला रहे होते हैं, आप शायद रोजे भी रख रहे हो, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप दुआ कराते हैं खुदा के खादिमों से, आप चर्च जाते हैं, आप दैय की देते हैं, आप ऑफरिंग देते हैं, हदिया देते हैं, भेंट देते हैं खुदा के घर में, फिर भी कुछ रिस्पॉन्स खुदा से नहीं मिल रहा होता, उसका क्या मतलब है? उसका यह हरगिज मतलब नहीं कि गॉड डजंट केयर अबाउट यू, खुदा आपकी परवाह नहीं कर रहा, बल्कि वो वक्त है कि गॉड इज टीचिंग यू समथिंग, स्पेशली गॉड इज टीचिंग यू फेथ. खुदावंद खुदा उस वक्त आपको ईमान सिखा रहा होता है। जैसा शागिर्दों के साथ कलाम में तो ऐसा ही लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सो रहे थे। द गॉस्पल ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्सेस 35-41, मरकुस की इंजील और उसका चौथा बाब और उसकी 35-41 यानी 41 आयत तक लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सो रहे थे और एक जबरदस्त तूफान आ गया और ऐसा तूफान कि कश्ती पानी में डूबने वाली थी। शागिर्द जब पानी निकाल निकाल कर घबरा गए, वो क्योंकि उनमें ज्यादा जो थे वो तो हर रोज झीलों में क्या समंदर में भी जाते, मछलियां पकड़ने का उनका तजुर्बा था। उन्होंने ऐसा तूफान शायद देखा ही नहीं था, ऐसा जबरदस्त तूफान था। उनको पता था कि ये तूफान जो है ये हमें मार डालेगा। जब वो पक्के हो गए, पुख्ता हो गए इस बात पर कि अब हम बचेंगे नहीं, तो उन्होंने जल्दी से खुदावंद यीशु मसीह को जगाया और उनका ये सवाल था। उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, क्या तुझे हमारी परवाह नहीं है? हम भी बहुत दफा ऐसा सोचते हैं ना, जब दुआ का जवाब मिलने में देर हो जाती है, जब हमारे आंसू सूखते नहीं, जब हमारे आंसुओं से हमारा तकिया भरता है, जब हमारा दिल बेचैनी से भर जाता है, जब हम एक तरह से स्ट्रेस बल्कि डिप्रेशन किसी हालत में चले जाते हैं, हम खुदा को पुकारते हैं, जब हमें लगता है कि सब कुछ चला गया है, वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जब आप सोचते हैं कि शायद खुदा है भी कि नहीं, कई दफा हम ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ऐसे हालात में चले जाते हैं जब हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि खुदा है भी या नहीं। ये वो वक्त है जब खुदा में ईमान की तालीम दे रहा होता है, जब प्रभु जी हमें विश्वास की शिक्षा दे रहे होते हैं। जदों परमेश्वर सानू विश्वास दे बारे नेचर दे बारे सिखांदा है, शागिर्दों ने कहा कि तुझे हमारी परवाह नहीं, हम मर रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, डरते क्यों हो, तुम्हारा ईमान कहां है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट न्यू अबाउट दैट स्टॉर्म, उसे पता था कि स्टॉर्म आएगा, उसने ही अलाउड द स्टॉर्म टू कम, उसने तूफान को आने दिया। नहीं तो जहां पर खुदावंद यीशु मसीह होते हैं वहां पर स्टॉर्म्स जरूरत ही नहीं कर सकते, वहां पर कोई भी ऐसी तरीके की कुव्वत जो है वो सर नहीं उठा सकती। जहां पर खुदावंद यीशु मसीह होते हैं, जहां पर उनकी प्रेजेंस उनकी हजूरी होती है, वहां पर तो तूफान वैसे ही रुक जाते हैं, वहां पर तो पाताल अपना मुंह बंद कर लेता है, मौत वहां से भाग जाती है, बीमारियां वहां से चली जाती हैं, बदरूहें दुष्ट आत्माएं शैतान इबलीस वहां से भाग जाता है। पर खुदावंद यीशु मसीह दरअसल शागिर्दों को ईमान की तालीम दे रहे थे, तुम्हारा ईमान कहां है? तो इस औरत को नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ईमान की तालीम देना चाहते थे। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि इस औरत का ईमान बहुत बड़ा है, इसलिए वो खामोश रहे। याद रखें, जब खुदा हम पर ट्रस्ट करता है, आप जानते हैं कि खुदा हम पर भरोसा करता है, हम पर ट्रस्ट करता है, हमें अपने ईमान के लेवल का पता नहीं, पर खुदा को पता है। खुदा हमारे ईमान को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। कई दफा लोग हमें कहते हैं, मुझे भी कहते हैं कि जी पास्टर साहब हमारे ईमान की बढ़ोतरी के लिए दुआ करें। मैंने कहा, आपको पता नहीं आप क्या मांग रहे हैं। हो सकता है कि ईमान की बढ़ोतरी के प्रोसेस में आपको मुश्किल में से गुजरना पड़े, आपको दुखों में से गुजरना पड़े, आपको कांटों के ऊपर चलना पड़े, आपको आग में से गुजरना पड़े, आपको सैलाबों में से गुजरना पड़े। पर जो लोग इस मुकाशवे से, इस भेद से वाकिफ हैं, इस कलाम से वाकिफ हैं, जैसा कादर मुतलक खुदा ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, हमारे प्रभु ने जैसा कहा है, यसायाह की किताब उसका 43 या पंजाबी 43 बाब और उसकी 3-4 आयत में खुदावंद खुदा ने कहा, द बुक ऑफ यसायाह चैप्टर 43 वर्सेस 3, 4, 5, 6 जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब तू आग में से गुजरेगा तो आग तुझे जलाएगी नहीं, और जब तू पानियों में से गुजरेगा नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे डुबोएंगी नहीं, क्योंकि मैंने तेरा नाम लेकर सैमुएल तुझे बुलाया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। अगर तुझे आग में से गुजरना पड़ता है तो कोई बात नहीं, खुदा क्या आग में हमारा साथ छोड़ देता है? नहीं छोड़ता, वो तो खुद भस्म करने वाली आग है, जैसा इब्रानियों 12:29 आयत में लिखा है, पंजाबी जो नती आयत हिब्रूज 12:29 लिखा है, हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, वो रोज चिल्लाती रही है, खुदावंद मुझ पर रहम कर। खुदावंद यीशु मसीह खामोश रहे, शगिर्द तंग आ गए उसकी आवाज से। आप जानते हैं कई दफा चर्चिज में लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, दुआ करते हैं, शाउट करते हैं, बुलंद आवाज से दुआ करते हैं, और कई दफा खुदा के खादमों से, पास्टर्स से रोज दुआ कराते हैं, वो भी तंग आ जाते हैं, वो खुदा के सुपुर्द करते हैं, खुदावंद ये रोज औरत तंग करती है, पर खुदावंद यीशु मसीह किसी को निकालता नहीं। अब जानते हैं शागिर्दों ने क्या कहा था, इस औरत को रुखसत कर दे, टेल हर टू लीव। पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि या शायद शागिर्दों के माइंड में यह हो, इसको रुखसत कर दे, यानी इसकी बेटी को कह दे वो ठीक हो जाएगी और ये चली जाएगी। पर खुदा का मकसद जब तक पूरा नहीं होता, उस वक्त तक हमारी जिंदगी में मौजजा नहीं। मेरी बात गौर से सुने, खुदा बहुत दफा मौजजा करने में डिले हमें लग रहा होता है कि देर हो रही है, क्योंकि खुदा अपने मकसद को हमारी जिंदगी में पहले पूरा करना चाहता है। और जब खुदा का मकसद पूरा हो जाता है तो खुदा मौजजा कर देता है। मैंने शायद एक दफा आपको बताया था या नहीं, मैं उन दिनों लाहौर में था, पाकिस्तान में, तो सुबह सुबह मेरी एक बड़ी बहन थी, वो आ गई मोटरसाइकिल पे अपने बेटे को लेकर, उनके उनके हस्बैंड के बड़े भाई का बेटा था, उसको साथ वो लेकर आ गई। उन्होंने कहा कि इसकी बहन के बेटा हुआ है और उसकी जुबान बंद हो गई है, शी हैज लॉस्ट हर स्पीच। तो डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल ने कहा हमारी समझ से बाहर है, इसको ले जाओ। तो उसके बाद उन्होंने कई डॉक्टर्स को, हकीमों को दिखाया, लेकिन वो उसे आराम नहीं आ रहा, प्लीज़ आप चलें दुआ करें उसके लिए। मैंने कहा नहीं, अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैंने क्योंकि जाना है तो मैं जहां पर मैंने जाना है वहां से वापसी पर आपके पास आऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, हम सुबह सुबह इसलिए आए, बाद में आप मिलते नहीं हैं तो आपको हम लेकर ही चलेंगे। वो एक गांव में रहते थे, उन्होंने मुझे मजबूर किया, मैं गया। मैंने जल्दी से उस लड़की पर हाथ रखे, दुआ की और उसे कहा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बोल। उसने एक लफ्ज नहीं कहा, वो मूव भी नहीं हुई। मैंने फिर दोबारा हाथ रखे, फिर दुआ की, फिर मैंने कहा बोलो हालेलुया, बोलो यीशु, पर वो नहीं बोली, वो मूव नहीं हुई। मैंने कहा मैंने आपको कहा था मैं जल्दी में हूँ, वापसी पर आऊँगा, मैं वापसी पर ही आऊँगा। उन्होंने कहा अच्छा आप वापसी पर आ जाना, लेकिन चाय हमने रखी है, वो चाय पीने के बगैर आप नहीं जा सकते। उन्होंने मुझे फोर्स किया वहाँ बैठने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा चले देखेंगे, जहाँ मैंने जाना है वो बाद में देखूंगा, ठीक है जी। मैं खैर कुर्सी पर बैठ गया वहाँ पर, और मैंने जैसे कलाम उनको बताना और सुनाना शुरू किया तो मुझे पाकरू की आवाज़ आई कि अब खुदा का मकसद पूरा हो गया है, अब तो लड़की पर हाथ रखे और लड़की बोलेगी। क्योंकि जब मैं कलाम सुना रहा था तो लड़की के बाप ने कहा कि मैं गुनहगार हूं, मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी खुदा यीशु मसीह को देना चाहता हूं। मैंने कहा खुदा इसीलिए मौजजा करने से रुका हुआ था। जैसे मैंने लड़की पर हाथ रखा मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि तू बोल, उसने खुदावंद की तारीफ करना शुरू कर दी, उसकी जुबान खुल गई। खुदा अपने मकसद को पहले पूरा करता है, फिर वो हमारे लिए मौजजा, फिर चमत्कार, फिर मिरेकल होता है। खुदावंद यीशु मसीह चाहते तो जैसे इस औरत ने पहले नंबर पर आवाज दी थी, ऐ खुदावंद रहम कर, खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ उस लड़की की तरफ निगाह करते, बदरुओं ने भाग जाना, लड़की ठीक हो जानी थी। पर खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत को चिल्लाने दिया क्योंकि वो अपने शागिर्दों को तालीम देना चाहते। मेरी बात सुने, आर यू द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट? क्या आप खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं? अगर शागिर्द हैं तो वो तालीम तो आपको देगा। अगर आज शाम आप दुखों में से गुजर रहे हैं, परेशानियों ने आपको घेर रखा है, आपका दिल टूट चुका है कि मैं क्या करूं, दुआ का जवाब नहीं आ रहा, मैं रोजे भी रखता हूं, या कोई बहन या बेटी कह रही हो मैं रोजे भी रखती हूं लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल रहा, आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 33, योना की इंजील उसका 16 बाब उसकी 33 पंजाबी की 33 आए, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया में दुख उठाते हो मगर खातिर जमा रखो, यानी दिल छोटा ना करो, हौसला रखो, क्योंकि मैं दुनिया पर गलब आया हूं। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, मैं दुनिया पर गलब आया हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह खामोश रहे। शागिर्दों ने भी कहा, सिफारिश की, इस औरत को जाने दे, इसको रुखसत कर दे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना अच्छी बात नहीं। औरत फिर कदमों में गिर गई, सिजदा करके कहा कि ऐ प्रभु, ऐ खुदावंद, कुत्ते भी मालकों की मेज से जो टुकड़े गिरते हैं उसी से अपना पेट भरते हैं, उसी से खाते हैं, उसी की वजह से जिंदा रहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जा, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। यह शागिर्दों के लिए तालीम थी क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने, मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं 17 बाब और उसकी 15 से 20 आयत तक, एक शख्स जिसके बेटे को मिर्गी पड़ती थी, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा कि मैं अपने बेटे को तेरे शागिर्दों के पास लाया था, वो उसे ठीक नहीं कर सके। और लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बेटे को जब ठीक कर दिया, शागिर्दों ने अलादा जाकर पूछा हम क्यों ठीक नहीं कर सके। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अपने ईमान की कमी के बायस, अपने ईमान की कमी की वजह से, अगर तुम में राई के दाने के बराबर ईमान हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे, तो अपनी जगह से सिरक जाएगा। यह कौन सा पहाड़ था? मिर्गी एक बहुत बड़ा पहाड़ है, मिर्गी ऐसी बीमारी है, मिर्गी ऐसा डेविल, ऐसा डीमन है, यह ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी है, ऐसी बीमारी है कि यह जाती नहीं, यह पहाड़ की मानद है इंसान के लिए, डॉक्टर्स के लिए भी, आज के जमाने में भी, इस मेडिकल साइंस के जमाने में भी, देर इज नो परमानेंट क्योर फॉर दिस डिजीज, एपिलेप्सी, इसके लिए कोई परमानेंट क्योर नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बेशक यह बड़ा पहाड़ है, राई के दाने के बराबर ईमान होगा तो तुम पहाड़ को कह दोगे, मिर्गी को कह दोगे और वो चली जाएगी। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। और खुदावंद यीशु मसीह ने साथ ही कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन ना होगा, कुछ भी इम्पॉसिबल ना होगा, बल्कि सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। खुदा यीशु मसीह ईमान की तालीम दे रहे थे, औरत को कह दिया, फरमा दिया कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। दरअसल शागिर्दों को वो दिखाना चाहते थे, देखो औरत का ईमान कैसा बड़ा है। ऐसे बड़े ईमान वाला कोई भी शख्स जब खुदा के पास आता है तो खुदा उसे फरमा देता है कि जैसा तू चाहता है। खुदा ये नहीं, खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं कहा जैसा मैं चाहता हूं, फरमाया कि जैसा तू चाहती है जा तेरे लिए वैसे ही। और कलाम में लिखा उसी घड़ी उसी वक्त उसकी बेटी शिफा पा गई। खुदा के नाम की तारीफ हो, प्रेज गॉड। खुदा यीशु मसीह के पास कोई भी आया, उसके पास यहूदी आए, उसके पास बहुत से जो कसमियां थी प्रोस्टिट्यूट्स थी, वो खुदा यीशु मसीह के पास आई, उसने किसी को निकाला नहीं। खुदा यीशु मसीह शमाउन नाम के एक बहुत रिलीजियस मजहबी धर्मी आदमी के घर इनवाइटेड थे, उनको दावत दी गई थी। और कलाम में हम पढ़ते हैं खुदा यीशु मसीह जब उसके घर में बैठे थे तो एक प्रोस्टिट्यूट एक कसबी औरत वहां पर आ गई और उसने अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानती थी कि मैं गुनहगार औरत हूं, मैं निजस और नापाक हूं, मैंने अपनी जवानी में कितने बुरे काम किए हैं, मैंने खुदा के हुक्मों को तोड़ा है, मैं अशुद्ध हूं, मेरी जुबान भी नापाक है, मेरे होंठ भी नापाक हैं, मैं कुछ कह ही नहीं सकती। कलाम में लिखा कि उसने दूर खड़े रहकर अपने आंसुओं से खुदा यीशु मसीह के पांव धो दिए। इतना रोई वहां पर खड़े होकर, क्योंकि जो ज्यूज लोग होते थे, यहूदी लोग जो थे, उनका कस्टम उनका दस्तूर था, उनका रवाज था, वो ऐसे कोनी के बल वो ऐसे करके बैठते थे अपने पांव इधर की तरफ करके। खुदा यीशु मसीह के पांव के पास खड़ी होकर वो सिर्फ रोती ही रही। और कलाम में लिखा है कि अपने बालों से खुदा यीशु मसीह के पांव उसने पूंछ दिए क्योंकि वह नापाक जिनाकार प्रोस्टिट्यूट थी, गुनहगार औरत थी। घर का मालिक जो था उसने सोचा कि मेरे पैसे जाया हो गए क्योंकि 12 शागिर्दों समेत उसने खुदा यीशु मसीह को दावत दे रखी थी अपने घर में। उसने सोचा सारा खाना भी खराब हो गया, पैसे जाया हो गए मेरे, मेरा वक्त भी जाया हो गया, क्योंकि जिसको मैंने अपने घर में उतारा है मैंने तो उसको खुदा का रास्तबाज नबी जानकर, या शायद कहीं उसके माइंड में हो कि ये हो सकता है मसीह हो, इसलिए उसने बुलाया था अपने घर में। तो खुदा यीशु मसीह ने उसके दिल का हाल जानकर, क्योंकि वो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है, आज शाम वो जानता है आपके दिल में क्या है। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी बेटी, मेरे बेटे, जो कुछ आप सोच रहे हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अच्छा हो बुरा हो, जो कुछ हम सोचते हैं वो हमारे ख्यालों से भी वाकिफ है क्योंकि वो आसमान से उतरा है। क्योंकि जमीन के रहने वाले जो होते हैं वो तो आसमान से कोशिश करते हैं कुछ जानने की, लेकिन ये तो कलमा खुदा है, ये तो खुदा का कलाम है, ये तो खुदा का रूह है, ये तो खुद ही खुदा है जो इंसान का रूप लेकर इस धरती पर उतरे थे ताकि खाक से बने हुए इन खाकी इंसानों को ताकि वो बचा सके, निजात दे सके। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। मैं उसका मसा यहां पर महसूस कर रहा हूं, घरों में भी इस वक्त उसकी अनॉइंटिंग उतरी हुई है, शिफा बख्शने के लिए, रिहाई देने के लिए, किसी की कमर में बड़ी सख्त तकलीफ थी, काफी दिनों से आप सफर कर, खुदा यीशु मसीह ने आपको शिफा दे दी है। किसी की लेफ्ट आई, किसी की जो बाईं आंख है, आपको बहुत सालों से तकलीफ है, खुदा यीशु मसीह आपकी आंख को नया कर रहे हैं, आप अपनी शिफा को कबूल करें। किसी की टांगें सुन्न हुई हुई हैं, आप ठीक से चल नहीं सकते, खुदा यीशु मसीह आपको शिफा दे रहे हैं मेरे भाई। किसी को जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, जिसको यरकान कहते हैं, हेपेटाइटिस बी, खुदा यीशु मसीह आपको शिफा दे रहे हैं। हर तरह का आर्थराइटिस बदनों को छोड़कर चला गया है, खुदा यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों की उंगलियां सुन थी, खुदा यीशु मसीह ने, खासतौर पर ये छोटी उंगली, खुदा यीशु मसीह ने आपको शिफा दे दी है। हम खुदा की तारीफ करते हैं, उसने कहा कि अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज, यानी कभी भी, नेवर, मैं उसे निकाल नहीं दूंगा, बल्कि मैं उसे गले से लगा लूंगा। खुदा यीशु मसीह ने शमौन से कहा है, शमौन तू यहूदी है, इसराइली है, जब मैं तेरे घर में उतरा तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, और इस औरत को देख जिसको तू गुनहगार पापी समझता है, उसने जब से मैं आया हूं उसने अपने आंसुओं से मेरे पांव धो दिए हैं। और तूने मेरे सर पर तेल नहीं डाला, लेकिन उसने मेरे पांव पर इत्र डाला है, इसलिए इस औरत के जितने गुनाह थे वो सब माफ हो गए हैं। खुदा के नाम की तारीफ हो, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो सब पापियों को, गुनहगारों को, सबको कबूल करता है और उनके गुनाहों को माफ करके उन्हें निजात देता है। क्या शाम मेरी बात गौर से सुने, आपका ताल्लुक किसी मजहब, किसी धर्म से हो, किसी फिरके से हो, कोई भी तालीम आपकी हो, किसी रंग, किसी नस्ल, किसी कबीले, किसी खानदान, किसी भी नेशनैलिटी से हो, जब आप खुदा यीशु मसीह के पास आएंगे तो आपको निकाल नहीं देगा। निकालने का एक दिन है, वो तो आखिरी दिन होगा, लेकिन आज वक्त है, वो सबको कबूल कर रहा है जो दावत उसने दे रखी है। द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस 28-29, मत्ती की इंजील उसका 11 बाब उसकी 28 और 29 आयत, यानी पंजाबी जो नती आयत जब हम पढ़ते, उसने कहा कि ए बोझ से दबे हुए लोगों, ए मेहनत उठाने वालों, सब लिखा है, सब, ये नहीं लिखा कुछ मेरे पास आओ, लिखा है सब, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा के नाम की तारीफ हो, आज वक्त है, अब खुदा यीशु मसीह के नाम को पुकार सकते हैं। आप कह सकते हैं मैं तेरे पास आया हूं, वो कहेगा, वो फरमा देगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे कबूल कर लिया है। और अगर आप निजात पाना चाहते हैं, उसको अगर आप कह रहे हैं मैं गुनहगार हूं, वो आपको फरमा देगा, मेरे बच्चे तेरे सब गुनाह माफ हुए। हालेलुया, रबा सांदा बरा सिंदा रबा, तेरा शुक्र, तूने बहुतों को निजात दी है। एक लम्हे के लिए अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ मांगेंगे। प्यारे खुदा यीशु मसीह, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तू बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। तेरा शुक्र, तू अल्फा और ओमेगा, इब्तदा और इंतहा, अव्वल और आखिर, आद और अंत है। तेरा शुक्र, तू आसमान से इसलिए उतरा ताकि गुनहगार इंसानों को निजात दे दे। तेरा शुक्र करते हैं, और तूने फरमाया कि अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज, यानी कभी भी निकाल नहीं दूंगा। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र, बहुतों ने तुझे पुकारा है और तूने निजात दी है। तेरा शुक्र, तूने बहुतों को शिफा भी दी है, खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन, प्रेज गॉड। अब मेरी बात गौर से सुने, आप यूरोप के किसी भी मुल्क में या जहां पर भी बैठकर आप कलाम सुन रहे हैं, आप अपने लोकल चर्च में जो आपके पास हो वहां पर आप जाकर बता सकते हैं। कि मैंने खुदाम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दी है और मुझे अब क्या करना है। आप एक काम तो ये भी कर सकते हैं, कहीं से भी बाइबल जो खुदा का कलाम है वो लें, उसको स्टडी करें। दूसरे नंबर पर मंगलवार की शाम को कभी कभार किसी वजह से मैं अगर ना सकूं, अदरवाइज हर मंगलवार की शाम को यूके टाइम के मुताबिक 7 से 8 बजे तक खुदा का कलाम लेकर आपकी खिदमत में आता हूं। आप यहां से भी सीख सकते हैं, अपने पास्टर्स से सीखें, बाइबल को पढ़ें। अगर चर्च आपके पास नहीं है, कहीं से बाइबल लें, स्ट्रगल करके लें, खुदा का कलाम पढ़ें और खुदा का रूह आपको सिखाएगा। क्योंकि कलाम में लिखा है योना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 45 आयत, द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 45 लिखा, वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। गॉड अलमाइटी इज गोइंग टू टीच यू, खुदा यीशु मसीह ही, खुदा का रूह आपको सिखाएगा। ऐसा काम करें और फिर आप देखें, एंजॉय योर सल्वेशन, एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर लाइफ, और खुदा की हजूरी को अपने घर से जानने दें। बाइबल को पढ़ें रोज। अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे, बल्कि शॉर्ट ब्रेक नहीं, बल्कि वो टेस्टमनीज हैं, आप उन गवाहियों को सुनेंगे। अभी मैं पाकिस्तान गया हुआ था तो वहाँ से ये एक चर्च में मैंने पैगाम दिया जो हमारा अपना ही चर्च है। लेकिन उससे पहले हम भाई साधक साहब के लिए जो इटली में हैं, खुदा उनकी तारीफ हो, वो 3-4 हफ्ते पहले पैरालाइज्ड हो गए थे, 4 हफ्ते पहले, तो खुदा यीशु मसीह ने मौजजा किया, उनकी ज़बान खुल गई है। हम उनके बाजू और टांग की मकम्मल रेस्टोरेशन के लिए हम दुआ करेंगे। और भी जितने लोग हैं, खुदा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। पर खुदा यीशु मसीह, हम भाई साधक के लिए तेरा शुक्र करते हैं, हमारे दिलों में बहुत शुक्रगुजारी है, तेरा शुक्र करते हैं तूने उनकी ज़बान जो बंद हो गई थी पैरालाइज्ड होने की वजह से, तूने रहम करके मौजजा करके उसकी ज़बान को खोल दिया है। हम दुआ करते हैं उनका बायां बाजू और बाई टांग भी मुकम्मल तौर पर रिस्टोर हो जाए, उसकी स्ट्रेंथ बहाल हो जाए, उसके टिश्यूज और उसके सारे मसल्स, उसका नर्व सिस्टम मुकम्मल तौर पर नया बन जाए। खुदा यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र करते हैं, तूने दुआ को सुना है। खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बहन नसरीन और उसके घराने को बरकत दे, उनके घर में शांति और पीस आ जाए। खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने दुआ को सुना है, खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। मेरी अगर आपसे बात ना हो सके, आप मेरे प्राइवेट नंबर पर, मेरे मोबाइल फोन पर आप कॉल कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर अ ब्रेक।
लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत अच्छा और अपने खुदा में बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं सबको अपील करता हूँ कि आप अपने यीशु के साथ दिल लगाएं। मैं नौजवानों को, नौजवान बहनों को, बेटियों को ये कहता हूँ कि अपने यीशु से दिल लगाएं, नजात पानी है। बाकी सब दुनियादारी इग्नोर करें, ये सब कुछ खत्म करें और अपने बाप यीशु में होकर अपनी पार्टी का करें।
सांस लेकर ऐसे देखा है कि मेदे की अगर तकलीफ हो, वो सांस लेने से जिगर और मेदे की तकलीफ का पता चलता है ना, दर्द होगा तो कहते हैं वो खत्म हो गया। कितने सालों से ये तकलीफ?
सालों के लिए माँ है।
अच्छा, अभी आप मुकम्मल शिफा पाए, खुदा उनकी तारीफ हो, अल्लाह का काम है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। अच्छा, आप क्या?
उस दिन से आज तक खुदा ने हमें वापस प्रॉस्पर किया, तमाम लानते जानती रही और खुदावन ने तमाम बीमारियों को जिंदगी में तब्दील किया। वो ऐसे बकार बीमार हुआ, खुदावन ने उसे कामिल शिफा दी। सना को खुदावन ने अपने फार्मों की दुआओं के वसीले से नई जिंदगी दी। खुदावन ने मुझे मेरे घराने को बरकत दी। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ जब अपने फरिश्तों को हवाएं अपने फार्मों को आता शोला बना के इस्तेमाल करता और इन शोलों को हमारे दरमियान लेके आता ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की पाए। हालेलुया। जब पास्टर साहब ने कहा कि खुदावन ने ऐसे हाथ झुकाया और उसने मिट्टी को छुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरा दिल और ज्यादा नरम हो गया कि खुदावन से किस कदर मोहब्बत करता है और मेरा ईमान है कि वो हमें कभी हलाक नहीं होने देगा। हालेलुया।
इनके साथ मुलाकात हुई और इनकी शगिर्दी में हम आए हैं तो यकीन जाने दिन दुखनी रात सुखनी बरकते हैं खुदा ने हमें दी है। जब ये फर्स्ट टाइम हमारे घर में थे एक मोर्चा, कभी मोर्चा देखा हमने? हमें मेरा कमरा इस तरह था जैसे मोर्चा होता है और इनका सर मेरे कमरे के साथ लगा। मेरी मिसेज ने बड़ी शर्मिंदगी हुई कि इतने बड़े खादम एक मोर्चे के अंदर गए हैं, लेकिन अब खुदावन के फजल से खुदा ने बड़ी जबरदस्त किस्म की जॉब अदा की है, बाइक अदा की है, ऐसे मुबशर की खिदमत अदा की है। बहुत सी बरकतों ने खुदा ने अपने खादिम के वसीला से बहुत सी बरकतें दी हैं। चंद दिन पहले मेरे भाई को खुदा ने इंटेलिजेंस में जॉब दी, अटल यादव साहब ने दुआ की, उसको चरकान था और तीन दफा रेंजेस में वो मेडिकल के लिए गया और मेडिकल फेल हो गया, लेकिन अटल यादव साहब ने उन्हें जब जॉब में रखवाया और कहा कि सुबह 7 बजे पास्टर बिन्यामीन से दुआ करवा कर फिर अपना मेडिकल करवाने के लिए CMH हॉस्पिटल में आना। ये लड़का सुबह 7 बजे आकर भाई साहब को उठाया और भाई साहब सुबह 7 बजे तो मेरे उनके घर आता भी आगे, लेकिन खुदा के फजल से जब वो मेडिकल के लिए गया तो जरकान की जरा सा भी एक भी जिंस नहीं था। इंटेलिजेंस में खुदा ने उससे जॉब अदा की है। अरे अब तो
घर अब ठीक है, बन गया। अच्छा तो प्रेज गॉड, जदान दी जाने। अच्छा भाई जी काफी देर से खड़े, मैं सिर्फ इन दो लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ। एल्डर साहब से छोटी सी दरखास्त करेंगे, वो थोड़ा सा बताएंगे खुदा ने उनको कैसे प्रॉस्पर किया, अपनी दुआ देंगे और मैं सिर्फ ये दो लोगों के लिए पहले दुआ करता हूँ।
बैंगलोर में PF से पैसे निकालने के नियम में बदलाव को लेकर बवाल, कर्मचारियों का हिंसक प्रदर्शन, 15 गाड़ियों में लगाई आग, सरकार ने नए नियम को 31 जुलाई तक टाला। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक केजरीवाल सरकार